अब अगला हिस्सा सुनिए आयत का, इतनी लंबी बात के बाद। के वलौ तवाद तुम लख तलफ तुम फिल्मियात, अगर तुम्हें पहले से इस वक्त का पता होता, इस वादे को तुम करने वाले होते, तो तुम्हारे अंदर इख्तलाफ हो जाता, इतना हार्ड टास्क था तुम पहलू ते ही कर जाते। अगर कहीं पहले से तुम्हारे और इनके दरमियान मुकाबले की करारदाद हो चुकी होती तो तुम जरूर इस मौके पे पहलू ते ही करते, यानी गिव अप करते, सॉरी आई कैन डू दिस। बट हुआ क्यों? अब यहां से अल्लाह का असूल है, जो मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि अल्लाह का असूल पढ़ेंगे हम। अल्लाह की मदद आती हंगामी हालात में, ये भी लिख लें पहले। अल्लाह की खास मदद खास किस्म के हालात में आती है। और अल्लाह का असूल क्या? वला किली यक्दी अल्लाहु अम्रन कान मफ़ूला, लेकिन जो कुछ पेश आया वो इसलिए था कि जिस बात का फैसला अल्लाह कर चुका था इसको जहूर में ले आए। वो क्या था? लिया हलिकमन हलक अम बेजीनतिन, ताकि जिसे हलाक होना है वो दलील रोशन के साथ हलाक हो, और वयाह्या मन हैया अम बेजीना, और जिसे जिंदा रहना है वो दलील रोशन के साथ जिंदा रहे। वइन्नल्लाहा लसमीउन अलीम, यकीनन अल्लाह ताला सुनने और जानने वाला है। अल्लाह ताला ने अपना वादा बता दिया कि मैं तो दलील के साथ काम करता हूँ। अहम तरीन आयत है ये, और अहम तरीन मौजू है इस आयत का। अल्लाह ताला दुनिया में ही ये साबित करवाता है कि जो जिंदा रहे अल्लाह के दीन के लिए जिंदा रहे, और जो हलाक हो उसको हलाक होना ही चाहिए। यहाँ देखिए, जिंदा रहने और हलाक होने से मुराद इंसानों का जिंदा रहना और हलाक होना नहीं है, बल्कि इस्लाम और जाहिलियत का मुराद है। अल्लाह ताला ने ग़ज़वा बदर में ये दिखा दिया कि जो लोग उस कमज़ोर से इस्लाम की मदद की नीयत से उठे, अल्लाह ने उस मुट्ठी भर गिरोह को फ़ायदा दिया, मदद दी। और आगे आप पढ़ेंगे, बतरान दिखाते शो ऑफ करते अपनी धूमधाम मचाते जो आए, अल्लाह ने उनको बदर के कुओं में फिका दिया। क्या बताया इसमें? कि अल्लाह ताला के दीन की जो मदद करेगा अल्लाह उसकी मदद करेगा। ये थीम है इसका। अब कोई हक के फर्क में ना हो, सबको पता चल जाए, खुली आंखों से पता चले इस्लाम हक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, उनके साथ ही सच्चे हैं, उनके साथ मदद है। देखिए आप इसको इस तरह समझिए, शायद मुश्किल मौजू है, मुझे मुश्किल लग रहा है समझाना आपको, लेकिन आप इसको यूं समझिए कि हम अपने घरों में एक छोटा सा प्रोग्राम रखते हैं। कभी कभी होता है कोई दावती वीकेंड पे रख ली, कितना काम करना पड़ता है, होता है ना? लफ्ज़ लिखिए ज़रा दावत, उस दावत के नतीजे में होने वाले काम कितने होते हैं। मेरा ख्याल है मेरे जैसे बंदे को तो इतना नहीं पता होगा, आपको ज़्यादा पता होगा जो माशाल्लाह एक्सपर्ट है। ग्रोसरी खरीदने, पकाने, समेटने, सर्व करने, खिलाने, फिर उसके बाद समेटने, और उसके बाद घर को असल फॉर्म में लाने से देख लें, सिर्फ एक दावत कितने लोग, मोस्टली दावतों में कितने होते हैं, 20 लोग कह लें, 20 लोगों की एक दावत आप बनाने वाली, उसमें कितने मरहले। अब इसको दावत के लफ्ज के आगे एक आगे लिख लीजिए, दावत इल्लाह। जब आपने एक छोटी सी पर्सनल दावत अरेंज की उसके मराहल, तो जब आप इसको एक बड़ी दावत, उदु इल्लाह कुंतुम खैरा उम्मतिन उख्रिजत लिन्नास, तो उस जिंदगी की हलचल कैसी होगी? बात वाजे, अपने ऊपर लेके कहें कि आज एक दावत आपकी पकी, आपने खिलाया पिलाया, मेहमान चले गए खुशबाश, अगले दिन फिर एक दावत है, अब वो मरहले फिर शुरू हो गए, फिर तीसरे दिन दावत है, तो आपका हाल क्या हो जाएगा? थोड़े दिन चले दावत को, अब शादी कर लें, शादी में मोस्टली 2-3 दिन हो जाते हैं ना, एक दिन मेहमान आ जाते हैं, फिर एक दिन सब मिलके बैठते हैं, हंसते बोलते हैं, फिर एक शादी के दिन पे नाम, फिर वली में। सच बताएं आप 4 दिन के बाद खुद क्या फील कर रहे होते हैं, इवन आप दावत में गए होते हैं, लोग कहते हैं रोज पहन पहन के थक गए, तैयार हो के थक गए, रातों को जाग जाग के थक गए। तो जब शादी जैसा खुशी का मौका हमारी जिंदगी में इतना कुछ ले आता है, तो जिस बंदे ने अल्लाह की तरफ बुलाना है उसकी जिंदगी में फिर कितनी हलचल होगी, कितने काम होंगे। इसके लिए सब्र और तहम्मुल और सुकून। अल्लाह ने ग़ज़वा बदर के अंदर मिलने वाली मदद और फतह का राज बता दिया कि ये सिर्फ उन लोगों पे आती है जो हर हाल में ये साबित करते हैं कि हमारा जीना इस्लाम के लिए, हमारा मरना इस्लाम के लिए। हम इस्लाम के नाम पे हैं, इस्लाम बचा तो हम भी बचेंगे, इस्लाम ना बचा तो हम नहीं बचेंगे। इस्लाम की कश्ती में बैठ गए हैं, तर गए तो खुश नसीब हैं, डूब गए तो खुश नसीब हैं। हजरत अबू हुरैरा अपने बारे में ये कहा करते थे, कहते थे मैं फला मैदान जंग में जा रहा हूँ जिसके अल्लाह के नबी ने खुशखबरी भी दी हुई थी। क्यों? कहते हैं अगर मैं वहां मर गया तो लोग कहेंगे अबू हुरैरा शहीद हो गया, मैं अल्लाह के पास पहुंच जाऊंगा। एहदल हुस्ना यही, पीछे पड़ चुके आगे भी आएगा। और कहते हैं अगर मैं उस जंग से वापस आ गया तो मेरा दिल है कि मदीने की गलियों में चलते फिरते लोग मुझे देख के इशारे करें, ये वो अबू हुरैरा है जो फलां जंग से गाजी बन के आ गया। ये है बंदे दीन का काम, दीन वाले का मुकाम ये है कि जियो तो हक के साथ, मरो तो हक के साथ। यह यमन है या अम बैजिना, ये कैसे हो सकता है कि इस्लाम को नुकसान दें और खुद फायदा ले। देखिए दो तरह के मुजाहिद हैं, एक है मुजाहिद फी सबीलिल्लाह और एक है मुजाहिद फी दुनिया। लिखिए जरा, तकाबुल कर ले। मुजाहिद फी सबीलिल्लाह तो वो है जिसके तस्करे हम पढ़ ही रहे हैं, हर हाल में दीन का काम, दीन 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 दिमाग पे सवार है। अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी अच्छी खुशी की खबर है कि अभी कुछ दिन में हमारे अपने ग्रुप में एक बच्ची की शादी है जो क्लासेस में, जिसको आप कहें कि बैकबोन है, नाम नहीं लेने की आदत वरना मुझे यकीन है आप नाम सुनेंगे तो खुश होंगे, आप जानते हैं एक बच्ची की शादी है हमारे पास। बिलीव मी 4 दिन रह गए हैं शादी में शायद, लेकिन उसकी ईमेलें और उसके मैसेजेस और अपनी शादी से रेलेवेंट गम बता क्या है, और खुशी किस बात की है कि उस्ताजा मैं सोचती हूँ कि अब मेरी शादी पे वो लोग नूरुल कुरान में आएंगे सुनने आपका दर्स या लेने देने कि जिनको मैं इतने साल से बुला रही हूँ, वो दर्स के नाम पे नहीं आते पर मुझे यकीन है वो मेरी शादी के नाम पे आएंगे। कैन यू बिलीव, ये है मन है या अंदलील बलील पे। मैं अक्सर उसकी ईमेल अभी भी पढ़ती हूँ, मैं कहती हूँ 4 दिन रह गए इसकी शादी को और इसको भी गम, ये पढ़े कि स्केजुअल टाइम टेबल और उसके भी प्रोग्राम और दिस एंड दैट, अल्लाह नजर से बचाए। एक दफा जो ये मजा चख लेना वो नहीं पलटता वल्लाही। देखिए कुछ रंग होते हैं ऊपर से चढ़ते हैं, कभी कपड़ा धो लेते हैं ना किसी दूसरे कपड़ों में रख के, तो कभी कभी आप कहते हैं हाय मेरा ये सारा जोड़ा खराब हो गया। फिक्र ना करें, मैं आपको क्यों फेंकी है नहीं, उसको 2-4 दफा और धोएं, आप देखेंगे वो कच्चा रंग है उतर के 2-3 धुलाइयों में वो जोड़ा फिर इंशाल्लाह निखर जाएगा। लेकिन एक रंग वो होता है जो तंद मैल कपड़े की जड़ में पड़ जाता है, इंक का धब्बा, वो नहीं जाता। मेरा और आपका इन 10 पारों में अगर दीन सिबगत अल्लाह रगो रेशे में डस गया ना, तो अब हमें चैन नहीं आएगा इसके बगैर। खुशियां भी आएंगी, गम भी आएंगे, जिंदगी में बीमारी सुख सेहत सब आएगा, लेकिन आपके दिल अटके रहेंगे, आप हमेशा अवेलेबल होंगे। पॉज आ जाता है, मैं छोटी सी मिसाल देती हूँ कि यहाँ से आप जो नॉर्थ सर्कुलर पे ईस्ट लंदन जाएं, क्या आपको हमेशा रोड क्लियर मिलते हैं? नहीं, कभी तो आप माशाल्लाह 100 की स्पीड से भी भागते होंगे और कभी ऐसा स्ट्रक हो जाएगा कि आप शायद 20-30 में स्ट्रक हो गए, शायद 10-15 मिनट ट्रैफिक में जाम है, लेकिन एंड ऑफ द वे क्या होगा, आप ईस्ट लंदन पहुंच जाएंगे, कभी भागे कभी चले। शर्त एक है कि आप उस रश और ब्लॉकेज से घबरा के एग्जिट लेके रोड ही ना छोड़ दें। जिसने रोड छोड़ी वो कभी ईस्ट लंदन नहीं पहुंचेगा। तो मेरी और आपकी अब ये जिंदगी आखिरी दम तक अल्लाह की जिंदगी है, अल्लाह को साफ पता है कि इनकी खुशियां भी आएंगी, गम भी आएंगे, कभी 5 वक्त नमाज वक्त से पहले भी पढ़ लेंगे टाइम से रेडी, और कभी आखिरी वक्त में भी पढ़ेंगे, कभी आज हम भाग के काम करें कभी आखिरी करेंगे, चलता रहेगा अल्लाह को, बल्कि हमारी मसरूफियात में हम पे और प्यार आएगा। पर इस तो आजकल ढीला है, हदीस में आता है, वल्लाही मैं ये बात हदीस को सामने रख के कर रही हूँ कि हदीस में आता है कि एक बंदा ऐसा होता है कि फरिश्ते आते हैं और उसको मस्जिद में ढूंढ रहे होते हैं, वह बंदा नहीं लोगों से पूछते हैं वो बंदा किधर, वो कहते हैं नहीं असल में रोज आता है वो मस्जिद में इस वक्त, लेकिन आज वो बीमार है। कहते हैं नहीं अल्लाह ने हमें कहा कि इस वक्त वो मस्जिद में बैठा इबादत कर रहा है, जाओ तुम उसका जरा हम देखने आए हैं। कहा अच्छा वो रोज आता है इसलिए अल्लाह ने कह दिया कि आज वो नहीं आ सका, उसका नाम मस्जिद में लिखो। सूरह नूर में आप ये मौजू पढ़ेंगे। कभी कभी हम इधर गायब होते हैं लेकिन अल्लाह कहता है आपके रजिस्टर में रोल कॉल नहीं लगती ना आपकी, आपका साइन आउट है साइन इन में नहीं है, लेकिन वल्ला ही बास दफा आपको सबको तसल्ली दे रही हूँ आपका उजर है इतना जेन्युइन होता है, अल्लाह ने आपकी रोज की रोल कॉल लगाई है। क्यों लगाई है? क्योंकि आप दिल से आते थे और आपको मजबूरी ने रोक दिया। सबसे बड़ी इसकी मिसाल किसी को याद है? हजरत उस्मान। हुदैबिया का मौका था और जंग के लिए खड़े थे लोग, कुछ हालात थे जिसपे मैं उलझाती नहीं आपको, लेकिन आपको पता है कि नबी सल्लम ने हाथ पे कहा अपने हाथ डालो, इसका हाथ उसका, सब सहाबा 1400 सहाबा के बैत ली गई थी कि हम ये काम करेंगे। इसी ऑनर पे उनको सहाबे बैतुर रिजवान का लकब मिला। और आपको पता है कि हजरत उस्मान की जगह अल्लाह के नबी ने अपना हाथ रखा, कहा ये मेरा हाथ है और ये उस्मान का हाथ है। और आपने कहा उस्मान हमने कोई घाटी ऐसी तय नहीं की जिसमें तुम हमारे साथ नहीं थे। गजवे तबूक पे वो जा ना सके, एक बीवी बीमार है, गजवे बदर में नहीं जा सके, दूसरी बीवी बीमार है, और अल्लाह के नबी ने कहा कि वल्लाही कई साथी ऐसे हैं जो इधर नहीं है, लेकिन अजर में कोई घाटी जो तुमने तय की उन्होंने भी की है। तो डोंट बी जजमेंटल प्लीज। कभी किसी ना आने वाले के लिए ये ना कहा करें उसने छोड़ दिया, वो नहीं आ रहा, वो बदल गया, वो नहीं है, वो तो छुट्टियां करेंगी, अब बच्चों की छुट्टियों के दिन चल रहे नहीं आएंगी। सिर्फ और सिर्फ अपनी फिक्र करें। मुझे तो अपना गम है कि बस एक लम्हे अपने से पूछ लिया करें, क्या ये मेरा उजर सच है? तो याद रखे, जीना है तो ऐसा जीना है। वो जीना भी क्या जीना जो अल्लाह के रस्ते के गम के बगैर जिए, वो गम जीना नहीं होता। बताया बच्चे का इंतकाल हुआ, तो जब मैंने उसको देखा, ऑफकोर्स रो रही थी, तो मैंने जो फीलिंग ली वो मैंने कहा कि आज इसकी बाजू खाली हो गए हैं। और वो बच्चा थोड़ा सा सीख था, उसको दिल का कोई मर्ज था जब से पैदा हुआ। बाहर तो देखे आज उसको चोट पड़ी है, उसके हाथ अब खाली हैं। बड़े बच्चे के साथ गले लग के रो रही थी कि अब एक बच्चा 1.5 साल से उसकी गोद में था और हर वक्त हॉस्पिटलों में, आज उसकी गोद खाली है। लेकिन आप देखें कि अल्लाह ने उसको एक बहुत बढ़िया सूदगी दे दी है ना। तो बस दफ़ा अल्लाह के फैसलों को कबूल करने के बाद हमारी ज़िंदगी में बड़ी खैर आती है। अब ये सारा सिनेरियो जो इस आयत के हिस्से में था, और आप आज तो शायद मैं इसका हक नहीं अदा कर सकी, अगर आप चाहें ना तो सूरह जन्ना में से इन आयतों की तफसीर सुनना चाहें तो सुन लीजिए। हर साल जब भी मैंने कुरान पढ़ा है इन लफ्ज़ों ने मुझे रोक दिया। ऐसे लगता है दिल की गिरहें पड़ जाती हैं इस लफ्ज़ को पढ़ के, कि लिया हली कमन हल कम बेजीना, ये हमारा दीन है बेजीना का। दलील रखो, तुम्हारे पास कयामत के दिन अल्लाह को पेश करने की दलील हो कि अल्लाह मैं ये नहीं कर सकी, ये दलील थी, ये उजर था, ये वजह थी। और वह यमन है यम बीना, शहीद भी लोग होते हैं, तो अल्लाह कहता है कि ला तकुलुली मैं युक तलुफी सबीलिल्लाहि अमवात, क्योंकि वो जिंदा है, ये जिंदगी है। शहीद हो के भी आप जिंदा है क्योंकि आप दलील पे जिंदा हुए हैं। वइनल्लाहलसमीउनलीम, आप सबको तसल्लियाँ अल्लाह दे रहा है, अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है, अल्लाह सब जानने वाला सुनने वाला है। उसको आपके सबके गम पता है, दुख भी पता है, आप किस मुश्किल में आके बैठे हैं। आप सब माओं को मैं खिराज तहसीन पेश करूंगी जिनके बच्चे आज घरों में और आप आए हैं या बच्चों को भी लाए हैं। मुश्किल होता है ये पूरा वीक, आपका सब्र का वीक है। और ऊपर देखिए कि माशाल्लाह इधर कितनी मुश्किल आता इस वीक में हमारे इस हॉल वालों के लिए, अल्लाह इनको बेहतरीन जजा दे। कितना आसान था, आंटी जी एक फोन कर देती भाई इस वीक को, आपको तो अनयूजल चल रहा है इधर ट्रेस रश, गाड़ियों की जगह नहीं, रूम नहीं, ब्राइडल रूम नहीं, कितना आसान था इस वीक में। ये भी मैंने अल्लाह की निशानी देखी कि इधर हालात ऐसे हैं कि छुट्टी दे देते। हत्ता कि हमें एक लम्हे के लिए ये भी सोचना पड़ा कि पिछले वीक की बजाय इस वीक में छुट्टियां देते, पर हमें नहीं पता था। लेकिन अल्लाह आपको और हम हॉल वालों को सबको ये इस वक्त टेस्ट कर रहा था, और आज आप कामयाब हैं इस पे। दुआ करें इनके लिए बेहतरीन कि अल्लाह इनके रिस्क और माल में बरकत है। एक ना कर देते हम क्या कर सकते थे, छुट्टी देनी पड़ती, कुछ भी करते। इसीलिए इस बुध को इम्पॉसिबल था, इसलिए छुट्टी दी आपको परसों की, लेकिन इंशाल्लाह उसको मेकअप करेंगे। तो जिंदगी का सफर ऐसे चलेगा, कभी हंसे कभी मुस्कुराए, कभी खुशी कभी गम, चलते रहिए। इन्नल्लाहलसमीउनली, उसको आपके आंसुओं का पता है, उसको पता है आप कितनी मुश्किलात में रहती हैं और दीन पे जमी रहती हैं, आपको बड़ी कदर करेगा। आपका कोई प्यारा आपके लिए कुछ थोड़ा सा तड़पे तो आप कहते हैं मैं इसका किसी मौके पे हक अदा करूंगी। ये फुला मौके पे मुझे हॉस्पिटल में देखने आई थी, इन्होंने मेरे बच्चों को रखा था, मेरे घर खाने पकाए थे, कभी मौका है मैं भी करूंगी। तो मुझे बताइए कि एक दोस्त का हक आप देना चाहें तो वो रब जात जिसके लिए आप और मैं कोई तकलीफ सह रहे हैं, तो क्या वो हक रखेगा? नौज़ बिल्लाह कि हमने अल्लाह को इतना एहसान फरामोश समझा कि आप उसके लिए तड़प रही हैं, परेशान हैं, और अल्लाह आपको छोड़ दे। और ये ग्रुप तैयार जो होता है ये साबिकून अव्वलून में, बीच बीच की नेकियों वाले तो बड़े लोग हैं माशाल्लाह। अब आप इसी दिल के साथ अगली आयत सुनिए। अब मैं अगले इसे का एक ही मजमून दे देती हूँ आपको, नाम अल्लाह न होनी को होनी कर रहा है, इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल कर रहा है। ये गजवे बदर के हालात नहीं है आपके हालात, आपका ईमान इस दर्जे का हो जाएगा। आप जब 30वें पारे के पे पहुंचेंगे, अभी ये चंद दिन पहले जो कोर्स पूरा हुआ तो स्टूडेंट्स की मैं शेयरिंग सुन रही थी कुछ, तो यही कह रहे थे, एक ने कहा कि मुझे यकीन नहीं आता कि मैं ये कोर्स कर चुकी हूँ। और आप कहते हैं कि ऑनलाइन वो 2 दिन का शायद 3 दिन का कोर्स था, तो 2.5 साल में पूरा हुआ है, ऐसे ही नहीं रहा। 2.5 साल वो सिस्टर कह रही थी मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैंने ये कोर्स पूरा कर लिया है, क्योंकि अल्लाह करवाता है, मेरी कहाँ औकात है मैं आपसे बोल सकूँ या मैं आपसे बात करूँ, ये अल्लाह बुलवाता है। तो इसलिए आप अल्लाह की मदद देखिए कैसे आई, आयत 43, इस जुरी का हुमुल्लाहुफी मनामी का कलीला, जब अल्लाह आपको दिखा रहा था है नबी इन्हें आपकी नींद में कम तादाद में, अब आपकी सबके वो जज्बे ठंडे होने लगे, इतना मुश्किल लफ्ज सामने आ गया। तफसीर का तो मजा आता है ना, लेकिन तर्जमे के एतबार से मुश्किल तरीन लफ्ज है मेरे ख्याल में ये कुरान का, इसको रुकिए और तोड़िए। यूरी का हुमुल्लाहु फी मनामिका, इसको हाईलाइट कर लें, आप मेरे साथ साथ बोलेंगे। असल में तो ये लफ्ज इतना भी नहीं था, इसमें कुछ और भी लफ्ज था। असल में लफ्ज पता क्या था, यूरी कुमूहुम, लेकिन वो गिरा के यूरी का हुमुल्लाह कर दिया गया। क्यों? यानी अरबी जुबान में एक इश्तबाह का कुलिया है, शुबा पड़ता है। कुछ लफ्ज इतने मुश्किल हो जाते हैं एक दूसरे के असर से कि बोलने में मुश्किल होता है, तो उसको आसान कर दिया जाता है। असल लफ्ज ये क्या है, इस जब यूरी का वो दिखा रहा था, लिखिए यूरी का के नीचे एक डैश लगाइए, वो दिखा रहा था यूरी का किसको, का तुझे, वो दिखा रहा था तुझे, क्या दिखा रहा था, होम उनको, यानी अगर आप फेल फाइल और मफूल की सूरत में कर लीजिए तो बात आसान होगी। देखने का काम आपसे हो रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किनको देख रहे हैं, होम कुफार को, होम के नीचे लिखिए कुफार। ए नबी जब आपको वो कुफार कौन दिखा रहा था, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाह सुब्हान तआला के नाम इधर फाइल है, कहाँ दिखा रहा था, फी मनामी का, आपकी नींद में। ये मनाम वही लफ्ज है जिसको नौम कहते हैं, ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, तो मनाम नींद, कलीलन थोड़ा। अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफार की तादाद थोड़ी दिखा रहे थे, कब, ख्वाब में। ख्वाब से यह मुराद ऊंग है, एक झपकी सी, जिसको उर्दू में या पंजाबी में झपकी कहते हैं ना, कभी आप बैठे होते एकदम एक ऊंग आती है, एक झपकी सी आती है, ये झपकी थी। अल्लाह के नबी गज़वे बदर में थे, हालात बड़े नासाजगार थे, हिम्मत टूटने वाली थी, और आप रो रहे थे कि अल्लाह अगर तूने इन मुट्ठी भर लोगों को आज खत्म कर दिया तो इस जमीन पर कोई तेरा नाम नहीं लेगा। याद है ना वो सारी दुआएं रीश पे मांगी हुई, इतने में अल्लाह के नबी को एक ऊंग आई, जिसको नींद कहा यहाँ। और याद रखिए कि नबी का ख्वाब सच होता है, जैसे हजरत इब्राहिम का ख्वाब सच था। तो अल्लाह ने नबी को दिखाया क्या, कि वो लोग बड़े थोड़े हैं, कलीला कलील से, हाँ इनकी नींद में थोड़ा है, क्यों दिखाया ऐसा, वलो अराकहुम कसीरा, और अगर आपको दिखाता कि वो तादाद में ज्यादा है, यानी अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखा दिया जाता कि दुश्मन तो बहुत ज्यादा है, तो नबी को तो कुछ नहीं होना था, लेकिन सहाबा अदना लोग होते हैं ना, आम दर्जे के लोग, नबी का ईमान तो और होता है, तो सहाबा का हाल क्या हो जाता, लफशिल तुम, तो ए मुसलमानों, अब यहां नबी को नहीं कहा गया, खिताब का रुख चेंज हो गया कि ए मुसलमानों तुम जरूर कमजोरी दिखाते, वला तनाजा तुम फिल अमरी, और मामले में इख्तलाफ करते। बात समझ आ रही है कि अगर दुश्मन की तादाद और हदफ और टारगेट इतना मुश्किल होता, या आपको इस तरह कह लो कि अगर कोर्स के शुरू में ही आपको सारी ये मुश्किलात जब आ रही होंगी, अगर, वैसे मुझे तो कोई मुश्किल नहीं दिख रही, लेकिन अगर आ रही है, पहले ही दिन बता दी जाती ये हो जाती, तो हम क्या होते, कहते मैं नहीं कर सकती, ये नहीं हो सकता, और जब हिम्मत टूटती है तो झगड़े बड़े होते हैं, और झगड़ा किसका किससे होता है आपको पता, आप जो काम दे रहे होते ना उसको बुरा कहना शुरू हो जाते हैं, हमारी मजबूरियों का एहसास नहीं, हमारी तो जिंदगी खत्म, सोशल लाइफ खत्म, बच्चे इनको तो पता ही नहीं, इनके पास तो काम नहीं है, हमारे पास तो बड़े काम है, इनके पास तो घर नहीं, हमारे पास तो बड़े घर है, ये सोच आती है। जब मुश्किल हालात आते हैं तो लोग एक दूसरे पे इल्जाम धरते हैं, लेकिन चूंकि सहाबा ईमान के आला दर्जे पे थे, इसलिए वलाकिन अल्लाह सल्लमा, लेकिन अल्लाह ने सलामती पैदा कर दी, अल्लाह ने तुम्हें थाम लिया, उदखुलु फिस्सिल्मी काफा की नीयत थी ना, अल्लाह ने तुम्हें जमाए रखा, चलो जम जाओ, 10 बातें मिजाज के खिलाफ भी लगी, कहा कोई नहीं, कॉज बहुत बड़ी है, ऑपरेशन हो रहा है मेरा, तो इसमें कुछ कट तो लगेंगे ही ना, तुम जम गए, इन्नहु अलीमुन बिज़ाति सुदूर, बेशक वो जो कुछ सीनों में है उसको जानता है। बात समझ आ रही है ना कि अल्लाह ने सहाबा को जमा दिया क्योंकि वो दिल के सच्चे थे। यहां मुफस्सरीन का एक असूल बयान करते हैं, और वो क्या, दीन के रास्ते में चलते हुए। अब यह मैदाने बदर है, इसको किसी भी सेंस में ले लीजिए, इंसान की हिम्मत कई दफा जवाब देती है, मेरी भी देती है, सच बता रही हूं, आपकी देती होगी तो मेरी भी देती है, मैं आपसे ज्यादा कमजोर हूं, आप तो माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड है। दीन के रास्तों में चलते हुए हिम्मत कई बार टूटती है, लेकिन अल्लाह ताला मुखलिसीन को थाम लेता है। आपको सूरत आले इमरान की कोई आयत याद आई? दो कबीले, बनु सलमा और बनु, याद है, वल्लाहु वलीयुहुमा। गज़वे अहद में दो कबीलों में सुस्ती आ गई थी, जब अब्दुल्ला बिन उबई 300 लोगों को लेके निकला तो कहा जब इतने निकल गए तो ये खैर नहीं होगी, हम भी चलते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि नहीं, वइज़ा फशिल तुम, जब तुम ढीले होने लगे थे, कमजोर होने लगे थे, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें थाम लिया। तो मुफस्सरीन कहते हैं कि मुखलिस को अल्लाह थाम लेता है, तो कभी लुढ़के पुड़के खड़े रहे, बस अल्लाह ताला आपको ले जाएगा, क्योंकि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। क्या पता चला इन सारी बातों से, जहां तक पड़ी दीन के कामों में बड़े बड़े रिस्क लेने पड़ते हैं। अगली बात, अल्लाह ताला आइंदा हालात के लिए एक ऐसा गिरोह तैयार कर रहा था जो दलील के साथ जिए, इसलिए अल्लाह ने मुश्किल में सहाबा को डाला, क्योंकि ये मुश्किल तो नबी के सामने आई है ना, बाद में तो आनी है, जब नबी ने भी कोई नहीं होना, तो सहाबा थामे रहे, खड़े रहे। फिर इस तरह एक और बात पता चलती है कि अल्लाह की मशीयत और तकदीर के तहत बदर में दोनों गिरोहों का आमना सामना हुआ। और अगली बात क्या पता चलती है कि जब हदफ छोटा हो तो लोगों के ईमान के दर्जों का पता नहीं चलता। जैसे अभी एज़रा की मिसाल थी, एज़रा तक वॉक करनी हो तो हम सब चल पड़ेंगे, पता ही नहीं चलेगा कि किसमें वॉक की कैपेसिटी ज्यादा है या कम है ना, हम सब एक जैसे लगेंगे। लेकिन अगर एज़रा से उठ के आगे समझें आपको कि किसकी मिसाल दूं, चलिए ईलिंग रोड तक पैदल चलना पड़े, हाँ शॉपिंग के लिए जाएंगे तो चल पड़ेंगे, मस्जिद तक जाना पड़े तो मुश्किल होता है ना। तो बड़े हदफ में लोग पोलराइज हो जाते हैं, सॉर्ट आउट होते हैं, सिलेक्शन हो जाती है लोगों की दीन की मुश्किलों में। ऐसे वक्त में अपनी फिक्र करें। फिर इसी तरह एक और चीज पता चलती है, हम तो पढ़ते हैं कि नबी का ख्वाब सच्चा है, लेकिन दुश्मन की तादाद थोड़ी दिखी तो क्या ये झूठ नहीं था? पहले सवाल समझे फिर जवाब दूंगी, सवाल समझ आ रहा है कि नबी सल्लम को लोग थोड़े दिखाए गए तो क्या ये झूठ था? तो यहां लिखिए कि नहीं, नबी का ख्वाब सच होता है। अल्लाह ने नबी को दुश्मनों की क्वांटिटी नहीं क्वालिटी दिखा दी। दुश्मन ज्यादा भी थे बट नॉट ऑफ क्वालिटी। अल्लाह के नबी ने फरमाया हर 100 ऊंटों में से एक ऊंट काम का होता है, बहुत ज्यादा लोगों में कोई एक बंदा अच्छा होता है। क्यामत के दिन अल्लाह ताला हजरत आदम को कहेंगे कि अपनी औलाद को छांटो, जन्नती जहन्नमी अलग करो, तो पूछेंगे अल्लाह ताला क्या रेशियो रखूं, तो कहा जाएगा हर 1,000 में से एक को जन्नतियों में और 999 को जहन्नमियों में डाल दो। फितरत का असूल है, अच्छी चीज थोड़ी होती है ना। तो क्या पता चला कि अल्लाह के नबी को कुफार की ईमानी हालत बताई गई जो बहुत थोड़ी थी। देखिए यहाँ थोड़ा सा समझ लें, अब ये बातें ऐसी हैं कि इस पर रुकना ही पड़ रहा है वरना हक अदा नहीं होगा। आप देखिए कि एक चीज होती है, इंसान मेहनत करता है दीन के रास्ते में, एक मेहनत होती है दुनिया के रास्तों में। एक वो काम है जो अल्लाह के काम को बुलंद करने के लिए आप करते हैं, और एक है जो आप अपने नाम को बुलंद करने के लिए करते हैं। फर्क क्या दोनों में? दीन का काम जितना ज्यादा आप करते हैं ना, उतनी हिम्मत बढ़ती है, क्योंकि कॉज बहुत बड़ी है, ग्लोबल, अल्लाह के नुमाइंदे। आप अपनी जात के लिए कुछ करते हैं, चलिए एक मर्द की मिसाल ले लेते हैं, हम जहन में कमाता है, उसको कमाना है, सिंपल मिसाल देते हैं, टैक्सी ड्राइवर है, गवर्नमेंट से अब कोई उसको हद नहीं, अब ये ना कहें कि 8 घंटे के बाद वो चला ही नहीं सकते गाड़ी, सिर्फ सिंपल समझते हैं, पैसों के लिए काम करने निकला, निकला घर से, कमा रहा है कमा रहा है कमा रहा है, लंच का वक्त स्किप, कमा रहा है क्योंकि गाहक पे गाहक है, जोहर गई जुम्मा गया, कमा रहा है कमा रहा है कमा रहा है, सवारी पे सवारी आ रही है। आप मुझे बताएं कि वो सिर्फ पैसों के लिए कमाते कमाते बिल आखिर कब थक जाएगा? वॉशरूम में जाना पड़ा, एक तरफ कस्टमर है एक तरफ वॉशरूम जाना है, किसको लेगा? भूख से दिल डूब रहा है, शुगर लो हो रही है, किसको लेगा? खाना खाएगा ना। नींद से बेचैन है कि उसकी आंखें मत हो गई हैं कि वो स्टेयरिंग पे सर मार रहा है। दुनिया कमाने वाला आखिर थक जाता है। एक वक्त आता है बंदा कहता जाए भाड़ में, कस्टमर फोन बंद करो सो जाओ। मैंने ऐसे बिजनेसमैन देखे हुए, हमारे अपने घरों में बिजनेसमैन थे, यानी रातों को भी फोन आते, हाजी साहब सेठ साहब ये हो गया वो हो गया, होता है ना। लेकिन एक वक्त आता है बंदा थकता, लेकिन फी सबीलिल्लाह काम करने वाला कभी नहीं थकता। आप कई दफा ये बात नहीं कहते कि सुबह आते हैं तो थके होते हैं, जब इधर से जाते हैं तो कैसे होते हैं बता दें? फ्रेश होते हैं, सुबह आते हैं तो सिक फील करते हैं, जाते कैसे हैं? फ्रेश जाते हैं, सेहतमंद जाते हैं। ये फर्क यहां बताया जा रहा है कि जब बंदा अल्लाह के रास्ते में निकलता है ना, तो अल्लाह ताला उसकी मदद कैसे करता है कि उसको थाम लेता है, और उस थामने में ही असल खैर है। तो लिहाजा हम सब इससे सहाबा को महसूस करके देख सकते हैं कि वला किन अल्लाह सल्लम, यही दुआ किया कर अपने लिए। ये वो लफ्ज है जो क्यामत के दिन नबी मांग रहे होंगे, अल्लाहुम्मा सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लिम, अल्लाह आज मुझे बचा ले, अल्लाह आज मुझे बचा ले। पूरे मैदान मख्चर में कोई आवाज नहीं होगी सिवाय नबियों की, और वो ये कह रहे होंगे अल्लाहुम्मा सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लिम, अल्लाह आज बचा ले, आज इन तकलीफों में घबरा ना जाओ। और वही थामा जाएगा उस दिन जो दुनिया में थमेगा, क्योंकि अल्लाह ताला बंदे को थाम लेता है। और यहाँ के माहौल को भी देख लीजिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफार के दिलों का खोट बताया। आज भी जो लोग इस्लाम के नाम पे निकलते हैं ना, वो नहीं थकते, और दुनियावी दिफा के लिए फौजी या आर्मी में जाने वाले, किसी पैसे रैंक के लिए जाने वाले, वो थक जाते हैं। तो सारी बात का खुलासा क्या है कि अपने आप को देखिए कि मैं दीन के कामों से थक गई हूँ या थक जाती हूँ, या मेरी हिम्मत बनती है। कोई फतवा ना दें खुद को भी ना लोगों को भी, लेकिन बस बेहतरी की उम्मीद, बेहतरी की उम्मीद रखें। अगर आप मैदाने बदर पे नजर डाल लें तो कुफार कितने थे? 1,000। मुसलमान कितने थे? 313। कैफियत के एतबार से तो मुसलमानों से वो 3 टाइम ज्यादा थे ना, लेकिन अंदर की कैफियत फर्क थी। ये अंदर की कैफियत है, गुनाह करने वाला अंदर से बड़ा कमजोर होता है और नेकी करने वाला अंदर से बहुत मजबूत होता है। आप देखिए कि मक्का के जो अच्छे अच्छे लोग थे ना, उनका क्या हुआ? मजे की बात है, बड़ा दिलचस्प नुकता है इधर। मक्का की जो क्रीम थी ना, क्रीम समझते ना, इंटेलिजेंट और जीनियस और इनली फितरत के एतबार से, मैं पैसों के से, वो तो पहले ही अल्लाह के नबी के साथ मुसलमान हो चुके थे और 100 कुछ थे। क्रीम ऑफ द सोसाइटी प्रॉफिट के साथ पहले ही मक्का से हिजरत करके मदीना में आ चुकी थी। पीछे रह गए मक्का में खोटे दिल के उलट पुलट वाले लोग, उनमें से भी कुफार का वो गिरोह निकला नबी सल्लम का मुकाबला करने, जो अबू जाहल के साथ था, ग्रज और गुस्से और इस्लाम की नफरत में भरा हुआ। साथ चलने मेरे, इतने घटिया दर्जे के लोगों की औकात क्या थी, अल्लाह ने युकल्लिलुकुम में बता दी। जो इस्लाम के खिलाफ दिमाग चलते हैं ना, वो खोटे लोग होते हैं। वो अपनी सोसाइटी के भी थर्ड क्लास लोग थे, जो इस्लाम दुश्मन थे और नबी दुश्मन थे, अल्लाह ने उनका लेवल ख़त्म किया। इस पे एक बस हदीस बता के आगे चलती हूँ कि हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मुझे अल्लाह ने दिखाया कि एक तराजू है, फिर उसमें अल्लाह ताला ने मुझे डाला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, एक पलड़े में अल्लाह के नबी हैं, फिर उसके मुकाबले में इधर एक बंदा डाला, तराजू मेरा ही झुका रहा, 10, 100, 1,000, फिर पूरे पलड़े में दूसरी तरफ लोग डाल दिए, अल्लाह के नबी का पलड़ा भारी रहा। ये अंदर की कैफियत है। एक मोमिन के अंदर जितनी एनर्जी होती है ना, वो एक गैसी गुब्बारे की तरह उसको ऊपर उड़ाने के लिए काफी होती है। और खोखले और भोखले लोग जो होते हैं ना, ऊपर से हजारों ही क्यों ना साथ मिल जाए, अंदर से जड़ें काटने वाले होते हैं। वो सिर्फ अपने फायदे के लिए दीन के साथ भी होते हैं। तो अल्लाह के नबी को यहां बता दिया कि आपके साथ जो थोड़े से भी लोग हैं ना, बट दे आर द बेस्ट पीपल ऑफ द नेशन। तभी तो कहा कि खैरु करनो करनी, बेहतरीन गिरोह मेरा है, मेरा दौर है, और उसके बाद उससे कम कम कम, और उसके बाद आज तो वही है जैसे बारिश के पानी के बाद भूसी पानी में होती है ना घास। आप पढ़ते हैं सूरह आलम में एक लफ्ज आता है गुस्सा, सुनो मैं गुस्सा, गुस्सा गुस्सा का लफ्ज आता है हदीस में कि एक वक्त आएगा कि दुश्मन मुसलमानों पे मुकाबला करने के लिए दौड़ेंगे, जैसे कोई खाने की दावत पे दूसरों को बुलाता है, तो कहा अल्लाह के नबी के मुसलमान थोड़े होंगे? कहा थोड़े नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे, लेकिन उनमें एक बीमारी होगी वहन की। कहा वहन क्या है? कहा हुब दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया से मोहब्बत और मौत से नफरत। और वो ऐसे होंगे जैसे बारिश के ऊपर गुस्सा, वो छिलके धागे कूड़ा करकट बारिश का पानी खड़ा रहे ना, तो मुसलमान खसो खशाक की तरह होंगे। ये जो कल्लील हुकुम है, आज आपको लगता है मुसलमान की कोई ताकत है? आज हम भी नहीं लग रहे कल्लील हुकुम, अंदर तो खोखले। सहाबा में से एक सहाबी आज आ जाए दुनिया में, और इस वक्त के कितने 2-3 बिलियन मुसलमानों का ईमान उस एक सहाबी के ईमान के बराबर नहीं हो सकता, मानना पड़ेगा। हम तो इतनी जल्दी बिक जाते हैं नफ्स के हाथों, ख्वाहिशों के हाथों, मुआशरे के हाथों, लोगों के हाथों, चंद फायदों के हाथों, अपने आराम के हाथों। इसलिए ये कहते हैं ना कि ये बाजी इश्क की बाजी है। जब पड़ चुके इस मैदान में तो डर कैसा, बेखतर कूद पड़ता है इंसान, तो फिर अल्लाह की ये मदद होती है। कैसे? आयत 44 को देख लें अब आगे, उसी का ऑपोजिट। वाइज यूरी कुमोहम, और जब तुम आमने सामने हुए, यानी जब तुम उनको देख रहे थे, कब? इज़त तकई तुम फी आयुनिकुम कलीलम व युकल्लिलुकुम फी आयुनिहिम, और जब तुम आमने सामने हुए तो तुम्हारी नजरों में इन्हें यानी कुफार को थोड़ा करके दिखाता था, और इनकी नजरों में तुम्हें थोड़ा करके दिखाता था। अब ये कभी ना समझ आने वाला मसला लगता है, जाहिर पीछे भी हम पढ़ चुके हैं अल्लाह के सूरत आले इमरान में कि वो थोड़े थे दुगने का दुगना, यहाँ अब कौन किसका थोड़ा इसको भी समझते हैं। जब दोनों लश्कर मुकाबले के लिए आमने सामने हुए, अल्लाह ताला ने ऐसी कैफियत पैदा कर दी कि मुसलमानों को भी देखने में कुफार थोड़े लग रहे थे और कुफार को भी मुसलमान थोड़े दिख रहे थे। समझ ले, पहले शुरू में ये हुआ, कैफियत बदलती गई। एक ऐसा वक्त है कि जब काफिर कह रहे हैं मुसलमान थोड़े से हैं, ये चुटकी बजाते हैं इनको खत्म कर देंगे, मुसलमानों को कुफार थोड़े लगे। ऐसी सूरत हाल अल्लाह ने इसलिए पैदा की कि ये जंग डट के हो। कुफार भी मुसलमानों को अगर ज्यादा देख लेते शुरू में तो भाग जाते, उनको मुसलमान थोड़े लग रहे थे हालांकि मुसलमानों में ईमानी कुव्वत बहुत थी। कुफार मुसलमानों को थोड़े दिख रहे थे हालांकि तादाद के एतबार से ज्यादा थे। तो अल्लाह चाहता था कि इस दिन को यौमुल फुरकान बना दे, और चाहता क्या था अल्लाह कि कोई फरीक दोनों में से मैदान छोड़ के ना जाए। लियक्दी अल्लाहु अमरन काना मफ़ऊला, ताकि अल्लाह पूरा कर दे इस मामले को जो होने ही वाला था। वइलल्लाहि तुरजउल उमूर, और बाकी सारे मामलात तो अल्लाह ही की तरफ जाते हैं।